ओम शांति। बाबा के यज्ञ के साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी आते हैं, साथ साथ जो 18 विंग हैं, उनका भी बहुत सुचारू रूप से कार्य करने के लिए बाबा ने आपको निमित्त बनाया। और अंतिम दिन जब थे तो कल ही हमने सुना कि बाबा ने सामने से कहा कि भाई आप कहां पर भी हो जल्दी मधुबन आ जाओ, और अंतिम दृश्य को देखने के लिए आप निमित्त बने। तो आपका भी वो भाग्य है और हमारा भी आज यही भाग्य है कि हम जब सुनेंगे तो ऐसे अनुभव करेंगे कि हम सचमुच साकार बाबा के अंतिम दिनों में वो कर्मातीत स्थिति क्या थी वो हम सभी आंखों के सामने लाएंगे और वो दृश्य खड़ा करेंगे। हमारे भ्राता आदरणीय मोहन भाई जी, आपका टॉपिक है ब्रह्मा बाप की अंतिम कर्मातीत स्थिति। ओम शांति।
ओम शांति। हमारे साथ साथ आप सब लोग भी बोलिएगा ओम शांति का। ओ शांति। हम सबके सामने ब्रह्मा बाबा ही एक ऐसा रोल मॉडल है जिन्होंने अभी तक कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया और हम सबके सम्मुख एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है जो हम सब बनना चाहते हैं। हम सभी भी यहाँ आए हैं इसीलिए कि हम सब संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें, अव्यक्त फरिश्ता बने, और जो बाप दादा हम बच्चों से चाहता है विजय माला का मणका बने। तो आज हम सब लोग कुछ ऐसी ही बातों पर आपस में चर्चा करेंगे जो कुछ बातें तो हमें सम्मुख देखने का अवसर मिला और कुछ बातें तो हम सब ने यज्ञ में सुनी है, बाबा की जीवन कहानी में पढ़ी है, दादियों के मुख से सुनी और जिन्होंने स्वयं देखा हुआ है। तो हम सब लोग भी अपने उस दिन को याद करें जब हम ज्ञान में आए थे, पहली बार ज्ञान सुना। ऐसी ब्रह्मा बाबा ने जब पहली बार, तब ज्ञान तो था नहीं, बाबा को ही बाबा ने, शिव बाबा ने निमित्त बनाया, तो बाबा को जब दिव्य साक्षात्कार हुआ, हम सब जानते हैं, उन डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कम समय में ही बहुत कुछ आदान प्रदान करना है। तो जब बाबा ने एक तरफ विनाश का दृश्य देखा और दूसरी तरफ वो दृश्य देखा कि ऊपर से स्टार आ रहे हैं, कोई राजकुमार बन रहा है, कोई राजकुमारी, और बहुत सुंदर दृश्य है, और जो वो दृश्य को देखने में बाबा इतना तल्लीन हो गए बस कि उन्हें कुछ सुध बुध ही नहीं रही, देख रहे थे। और तभी बाबा को आवाज कानों में सुनाई पड़ी, कौन सी? ऐसी दुनिया तुम्हें बनानी है, ये दुनिया तुम्हें बनानी है। बस बाबा ध्यान से उतरे और देखा कौन था, किसकी आवाज थी, मैं कैसे ये दुनिया बनाऊंगा। लेकिन उस दिन से ही बाबा को ये हो गया कि मुझे ये दुनिया बनानी है, और उस दिन से ही बाबा को, जब से ये जागृति हुई, बाबा का जीवन ही बदल गया बिल्कुल। ऐसे ही हम सब लोग अपने अपने जीवन में झांक करके देखें कि मुझे जब से ज्ञान मिला तो क्या मेरा भी उसी हिसाब से ही जीवन परिवर्तन हुआ कि बस यही एक ही धुन, एक ही लगन लगी रहे इस दुनिया बनाने में, ऐसी दुनिया बनाने में मुझे बाबा का सहयोग करना है, बाबा के साथ हूँ मैं, और ये दुनिया अब से मेरा जीवन बाबा के लिए है। तो जैसा बाबा को, क्योंकि बाबा समान हमें कर्मातीत बनना है, तो एक एक चीज में हम देखते चले कि बाबा ने कैसे क्या कदम रखा और हम कैसे बाबा के पीछे चले। साथ ही साथ उस दिन से तो हुआ, लेकिन एक विशेष घटना, जो क्योंकि कोई भी चीज होती है उसका कोई फिजिकल स्वरूप होना चाहिए, रोल मॉडल। जैसे मानो हमारी तबीयत खराब है, बुखार है, या ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं, तो भाई थर्मामीटर से देख लिया, ब्लड प्रेशर से देख लिया, पता चल जाता है, तो उसका निदान कर लेते हैं, गोली खा लेते हैं, आराम कर लेते हैं। ऐसे ही हमें अपना पता चलना चाहिए, रेगुलर हमें ऑडिट करना चाहिए कि जब से हम ज्ञान में आए हैं, 2, 4, 10, 20, 25, 50 साल जितना भी हुआ है, कि मेरी डायरेक्शन, दशा और दिशा मेरी ठीक है। क्योंकि डायरेक्शन अगर ठीक होगी और स्पीड ठीक होगी तो हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। या तो अगर डायरेक्शन में कमी हुई या स्पीड में अगर कमी हुई तो मंजिल की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जैसा बाबा चाहता है शायद हम तक उस मंजिल को प्राप्त करने में कठिनाई हो। तो बाबा को जब आप सबने सुना होगा, गुलजार दादी तब छोटे ही थे, 9, 7, 8, 9 साल के, एक बार ध्यान में गए तो ऊपर सूक्ष्म वतन में बाबा को देखा, सूक्ष्म वतन वासी ब्रह्मा को, तो बड़ा आश्चर्य हुआ उन्हें देख करके आए, और फिर नीचे आके मम्मा से कहा कि मम्मा आज मैंने वहां बाबा को देखा था, बाबा जैसे ही व्यक्ति थे वो, लेकिन बड़े तेजोमय। कौन थे वो? तो मम्मा ने कहा कि भाई मुझे भी नहीं मालूम, बाबा से पूछो। फिर वो बाबा के पास मम्मा ले गई, तो बाबा से पूछा, सुना होगा आपने ये सब यज्ञ का इतिहास, तो बाबा को भी नहीं मालूम था ये। अच्छा बच्ची, वहां देखा तुमने? हाँ बाबा, लेकिन वो बड़े तेजोमय थे, तो अगली बार जब तुम ध्यान में जाओ तो पूछना कि आप कौन हैं। तो अगली बार जब गुलजार दादी गई ध्यान में तो उनसे पूछा, आप कौन हैं, और आपके जैसे बाबा तो हमारे साथ वहां रहते हैं नीचे। तब बताया कि मैं उसी ब्रह्मा का संपूर्ण स्वरूप हूं, और उस ब्रह्मा को मेरे समान बनना है। तो आके उसने जब बताया बाबा को, तो बस बाबा को उस दिन से धुन लग गई कि मुझे उसके समान बनना है। और बाबा बार बार पूछते थे बीच बीच में, हाँ बच्ची अब क्या अंतर है उस ब्रह्मा में और मेरे में? तो अक्सर बहनें संदेशी बताते थे, बाबा वो बहुत प्रकाशवान है, तेजोमय है, वो जब चलते हैं बड़ी दिव्य चाल है उनकी, जब वो वहां पर हम देखते हैं उन्हें, तो जब बहनें भोग लगाने के लिए आती हैं, बहुत ही दिव्य रीति से हर चीज उनकी बड़ी डिवाइन है, बड़ी लाइट है। तो ब्रह्मा बाबा को उस दिन से ये हो गया कि मुझे वैसा, तो यहाँ साकार में भी बाबा का वैसा ही चलना, वैसा ही देखना। ये जो सामने निर्वल भाई का ऑफिस, शशि बहन का ऑफिस है, ये जो जगह है अपनी, अक्सर बाबा यहाँ टहला करते थे, दोनों हाथ पीछे, बिल्कुल धीरे 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 फरिश्ते की तरह चलते हुए। और बाबा कई बार कोई भी होते थे तो बाबा कहा करते थे, देखो बच्चे फरिश्तों की चाल ऐसे होती है, बिल्कुल हल्के और डिवाइन। तो हमें अपने में ये भी चेक करते चलना है, जब हमें बनना ही देवता है, और बाबा की कई जीवन कहानी में भी लिखा है, तो बाबा समान ही क्या मेरा ईच एंड एवरी स्टेप है, व्यवहार है। मुझे याद आता है 62-63 की बात होगी, 63-64 की, तो एक बार ऊपर ब्रह्मा भोजन हो रहा था, हम लोग बाबा के साथ हर गुरुवार को भोजन होता था बाबा मम्मा के साथ, हिस्ट्री हॉल में देखा है आपने, 3 संदली होती थी, 1, 2 और बीच में 1, 3, 1 पे बाबा बैठते थे, एक पे मामा बैठती थी, बीच की संदली बच्चों के लिए खाली रहती थी। तो जब भी कोई पार्टी आती थी, एक एक बच्चा आता था, अपने अनुभव नाम परिचय देता था, क्यों आया है, क्या लक्ष्य लेके आए हैं। और जिस दिन जाने का दिन होता था, उससे एक दिन पहले भी वो पार्टी का हर सदस्य आता था कि मैं क्या लक्ष्य लेकर के जा रहा हूँ और क्या करना है। फिर बाबा मामा भी सुना करते थे और बाबा डायरेक्शन बता, हाँ बच्चे ये लक्ष्य अच्छा ऐसा करना ऐसा, बाबा गाइडेंस दिया करते थे। तो ये तो क्लास की बात हुई। और ऐसे ही ऊपर जब ऊपर होता था दोपहर को, नीचे ब्रह्मा भोजन, बहुत ठंडी के दिन होते थे तो कई बार हिस्ट्री हॉल की छत पर, तब तो न ये बिल्डिंग थी और कोई नहीं थी, हिस्ट्री हॉल ही था एक। तो बाबा के ऐसी एक बार ब्रह्मा भोजन हो रहा था, हम तो तब 17-18 साल के रहे होंगे ऐसे ही, तो पीछे बैठे हुए थे सारे भाई बहन। जैसे इधर बाबा बैठे थे, एक तरफ भाइयों की लाइन, एक तरफ बहनों की लाइन, नीचे ही सब बैठते थे और सामने कुमार कुमारियां जो होते थे वो भी सब सामने पीछे की तरफ बैठा करते थे। ऐसे बैठे थे तो एक बार बाबा ने देखा बस भोजन, अरे बच्चे तुम वहां क्यों बैठे हो, हमें बोला, आओ आओ यहाँ बाबा के पास आ गया। अब बाबा के पास तो सारे बुजुर्ग और पुराने पुराने महारथी भाई बहन बैठे हुए थे, तो आओ बच्चे आओ, बाबा ने बुलाया अपने पास ही बैठा दिया वहां पर। और बाबा का भोजन बिल्कुल जरा सा इतना ही छोटी सी थाली होती थी, उसमें इतनी सी पतली सी जैसे मटरी होती है वैसी रोटी एक या दो, और बस पहले हर एक को बाबा एक एक गिट्टी खिलाया करते थे हर एक को, और उसके बाद सब लोग फिर भोजन शुरू करते थे। तो इतना बाबा का स्नेह प्यार। और बाबा भले कहता है कि देखो बाबा भी कहता है, बाबा भी भूल जाता है, लेकिन लगता था बाबा ने कितनी युक्तियां बताई हैं। बाबा कहता है बच्चे पता है बाबा क्या करता है याद रखने के लिए, कि शिव बाबा को याद रहे। तो कैसे बाबा याद रहे, देखो बाबा खाता है ना, एक गस्सा खुद खाता है, फिर एक दूसरा बाबा ये समझता है कि शिव बाबा सामने सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा के रूप में बैठे हैं, एक गस्सा मैं उन्हें खिलाता हूँ, फिर एक मैं खुद खाता हूँ, एक मैं उन्हें खिलाता हूँ, फिर भी देखो बाबा भूल जाता है। कई बार मैं समझता हूँ कि बाबा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर ही मैं भी ब्रह्मा मैं भी हूँ और शिव बाबा भी है, तो एक एक बाबा को खिलाते हैं फिर भी भूल जाता हूँ। तो कितनी प्रैक्टिकल बात, ऐसा कोई दुनिया में गुरु नहीं होगा जिसने जो अपनी सारी बातें लौकिक पुरानी कमी कमजोरी वो भी अपने शिष्यों को अपनी सभा में बता देता, इतना साफ और सच्चा दिल। जो बाबा ने आज भी कहा ना ऑनेस्टी वाली बात, प्योरिटी के ऊपर सदैव चढ़ती कला किसकी हो सकती है, सच्चाई सफाई। और दूसरी बात, इसमें सदैव चढ़ती कला उसकी होगी किसकी, आज की मुरली में था ना कि बाबा जो है जैसा है, जैसे बाबा अपना सारा भेद खोलता है बच्चों के सामने, ऐसे बच्चे भी मैं जो हूँ जैसा हूँ अपने को बाबा के सामने जो प्रत्यक्ष करते हैं, उसकी सदा संगम युग में चढ़ती कला होगी। हम सभी चाहते हैं हमारी सबकी चढ़ती कला हो, आगे बढ़ते रहे। इस रीति से बाबा एक एक बात को बता करके हर बच्चे को ये टारगेट बाबा का रहता था कि वो बच्चा आगे से आगे बढ़े। हमें याद है जब हम लोग ज्ञान में आए तब लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम ग्रेजुएशन कर रहे थे, 1961 एंड या 62 बिगनिंग की बात है, तो बाबा कानपुर में आए हुए थे, कुछ महीने ही हुए थे हमें ज्ञान में। तो कानपुर लखनऊ से बिल्कुल पास है, 2 घंटे का रास्ता है, तो सब लखनऊ वालों ने प्लान बनाया कि चलो बाबा से मिलने जाते हैं कानपुर में। तो सुबह बस में करके वहां पर गए सब लोग कानपुर वाले, कानपुर पहुंचे लखनऊ वाले भाई बहन, तो तब तक बाबा की मुरली लगभग समाप्ति की ओर थी। तो मुरली समाप्त होने वाली थी, तब सब पहुंचे, सब जाके बैठ गए और बाबा की मुरली जब समाप्त हुई उसके बाद टोली वगैरह देके सब लखनऊ वाले बाबा के पास बैठे और बाबा ने पूछा बच्चे हर एक को एक एक को बुला के जब सबको पूछ लिया, हमारा भी बाद में नंबर आया क्योंकि पहले तो सारे भाई बहन बड़े और बाद में कुमार कुमारिया जो थे वो सबका नंबर बाद में। तो बाबा ने पूछा क्या नाम है, तो हमारा लौकिक नाम श्री मोहन है, श्री है वैसे और मोहन तो फैमिली नेम, तो श्री। तो बाबा ने मैंने बताया कि बच्चे क्या बोला, मैंने बताया बाबा श्री नाम है। अरे बच्चे फिर से बोलो क्या बोला, तो हमने बताया श्री। तो बाबा देखो कितने ह्यूमरस, यही बाबा की खूबी थी, बड़ों के साथ बड़ा, छोटों के साथ छोटा, बुजुर्गों के साथ बिल्कुल बुजुर्ग जैसा। अरे अरे दादी आओ, दीदी आओ, गंगे गंगे आओ, आओ। आज बाबा को एक ऐसा बच्चा मिला है जो कौन है, नहीं जो बाबा से भी ऊंच है, ऐसा हो सकता है कोई है? हमें भी ज्ञान में नए नए थे, कोई पता नहीं चला। तो सब बैठे हुए थे तो हम तो देख रहे थे कि बाबा क्या बताएंगे। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे श्री किसे कह सकते हैं, सबको मालूम है ना श्री किसे कहते हैं, जिसकी आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हो। अब न इस समय न तो आत्मा पवित्र न शरीर पवित्र, शरीर भी विकारों की देन है और आत्मा तो कलयुग के अंत में आते आते अपवित्र हो ही गई है, अभी सभी अपवित्र है। तो अभी कोई भी श्री नहीं लगा सकता, ब्रह्मा बाबा भी श्री नहीं लगा सकता और तुम्हारा तो नाम ही श्री है। ऐसे बाबा ने पहले तो चिटचैट करी, हंसी, फिर बाबा ने कहा अब तुम्हें श्री जैसा बनना है, तो इसीलिए अब बाबा तुम्हारा आज से नाम मोहन करता है, तो मोहन नाम है तुम्हारा, श्री जैसा बनना है। तो बाबा ने भी जैसे नाम को एकदम चेंज कर दिया और श्री जैसा बनना है, श्री माने आत्मा को भी पवित्र करना है, शरीर को भी, पांच तत्वों को भी पावन करना है। तो इस तरह बाबा हर ज्ञान की हर बात में कोई ना कोई गुह्य रहस्य ज्ञान का भरा हो। आप सब मुरली में सुनते हो ना, किसी का नाम मानो, अगर कोई होता था माया देवी तो बाबा क्या कहता था, कि अब तो माया से का पीछा छोड़ना है, माया ने बहुत परेशान किया, अब माया नहीं बाबा तुम्हारा नाम, कुछ भी गीता देवी या लक्ष्मी देवी कुछ भी वो बाबा कर देता था। हमारे एक भाई का नाम और भी ना, किसी का नाम गरीब दास था, तो बाबा ने कहा अरे बच्चे अब तुम इतना बड़ा भगवान मिला है, बाप मिला है, हम तो बड़े से बड़े साहूकार के बच्चे हैं, अब से तुम्हारा नाम गरीब दास नहीं बाबा अमीर चंद। तो बाबा ने नाम बदल दिया, अमीर चंद कर दिया, जिससे कि बाबा चाहता है हमें पुरानी दुनिया की कोई भी ऐसी बात बुद्धि में न रहे कि हमें ये दुनिया याद रहे, बस नई दुनिया, हमने संगम युगी दुनिया, परम धाम जहाँ जा रहे हैं, सूक्ष्म जो बाबा ने पांच स्थान बताए हैं बुद्धि को, बस वहीं का ही, पुराने जन्म ही भूल जाए, ऐसा बाबा हम बच्चों को करता था। और बाबा ने क्या किया देखो, बाबा कहता है ना कई बार कि जब इधर आते हो अपनी जीवन कहानी लिख करके दो, जिससे इस जन्म में जो भी पाप किए हो वो आधे माफ हो जाएंगे। तो उस समय तो बहुत कम होता था परिवार, तो हम भी अपना लिख करके पूरा और लाए हैं। बाबा ने कहा जब से याद है तब से, अब 17-18 साल तक की उम्र तक जो भी याद था वो सारा लिख के ले आए। यही इधर बाबा मिलने का टाइम तीन जगह देते थे, अगर कुछ कम लोग दो तीन लोग होते थे, कई बार बाबा अपने कमरे में मिलते थे। बाबा का कमरा तो बहुत छोटा था, जहाँ तक पलंग है ना बस उतना ही था, और पीछे से दरवाजा था, ये तो बाद में एक्सटेंड किया है, चौड़ाई भी बाद में करी है इस साइड में, ये कुछ नहीं था। अंदर की तरफ से जहाँ यीशु दादी का वो कमरा है, पीछे की तरफ से गली जहाँ पहले प्रेस का पुराना वो था ना, प्रेस कपड़े प्रेस रहते थे, उधर से। तो बहुत ही छोटा 8x10 का या 8x8 का रूम होगा, ऐसा था बस। तो दूसरा कुछ ज्यादा लोग होते थे, 6-7 लोग, 5-7, तो झोपड़ी में मिला करते थे। और अगर तब पार्टी बड़ी होती थी, बड़ी पार्टी का मतलब उस समय 12-15, इससे ज्यादा तो बड़ी पार्टी होती नहीं थी, बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी अगर 15 लोग आ गए तो फिर बाबा हिस्ट्री हॉल में मिलता था। तो हम लोग 3-4 लोग थे, तो झोपड़ी में बाबा से मिले, बाबा से मिलना होता था। तो फिर बाबा को वो दिया लिखा हुआ, तो बाबा ने देखा। और बाबा की एक विशेषता थी, और वो हम सब भी अपने में अनुभव अब करते जा रहे हैं काफी, कि बाबा को कोई चीज, दो पोता मेल आता है, हिसाब आता है, कोई भी चीज, तो बाबा की नजर वहीं जाती थी जहां करेक्शन करनी होती थी, कुछ गलती होती थी। बाकी नहीं तो हर चीज को इतना इतना कैसे पढ़े। बस बाबा ने देखा, पलट गया, हाँ बच्चे ठीक है, ये बताओ कि कोई ऐसा विकर्म विकार का, काम विकार का या कोई तो नहीं? नहीं बाबा, नहीं, छोटी मोटी वही है, मिठाई खा ली बाजार में, ये खा लिया, तब तक तो 17-18 साल तक तो ये, कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है, बहुत अच्छा बाबा खुश है। बाबा ने करके और फिर मतलब दे दिया। तो बाबा क्या चाहता है कि हम अपने कुछ भी, कोई बात हो, अभी भी भले अब साकार बाबा नहीं है, लेकिन होता क्या, अगर कभी किसी ने कोई विकर्म किया होगा और बुद्धि में तो है कि हमने कोई ये बात नहीं करनी चाहिए थी और ये कर ली, क्रोध भी अगर आ जाता है तो क्रोध का जो अंत होता है हमेशा पश्चाताप से होता है। क्रोध की शुरुआत आवेश से, जोश से होती है, और अंत पश्चाताप से। ऐसी कोई भी विकार हो तो उसका, तो बाबा ने यही कहा है, लिख, अभी साकार में नहीं तो कैसे लिखेंगे। तो वो भी विधि बाबा ने बताई है। क्या विधि है? बाबा से माफ भी कराना हो और हमारा दिल भी हल्का हो जाए, क्योंकि हम सब पुरुषार्थी हैं, कोई ना कोई बिल्कुल 100% बाबा के बताए हुए मार्ग पर प्रतिदिन चलने में, कई बार ऐसा होता है ये नहीं करना चाहिए था ये हो गया, ऐसा होना चाहिए था ये नहीं हुआ, कई बार होते हैं, तो उसके लिए क्या करें? बाबा ने बताया भी है ना, हाँ क्या करेंगे? देखो बाबा के कमरे में भी, झोपड़ी में भी, भंडारी के साथ साथ पत्र रखा हुआ है ना। तो कोई भी बात हो, बस जब भी आते लिख करके, और चाहे ये भी रहता है भाई कि क्या होगा अगर हमारे भाई बहनों को या दादियों को, तो अपना नाम भी नीचे ना लिखे, चाहे कुछ भी नहीं, यहाँ आते हैं तो यहाँ पर बाबा के भंडारी में या जहाँ पर बाबा का पत्र है, झोपड़ी या बाबा का कमरा, वहां डाल दें, या जहाँ पर हम हैं प्रतिदिन वहां पर भी रोज रात को लिख करके, बस जब बाबा के सम्मुख याद करके बैठे उसके बाद उसे फाड़ करके चाहे डस्टबिन में डाल दें। बाबा भावना का भूखा है, बाबा चाहता है यही। आज बाबा ने कहा ये नहीं कि बाबा को तो मालूम है सब, त्रिकालदर्शी है, नहीं, लेकिन मालूम होते भी बाबा ये चाहता है बच्चे कितने साफ हैं, सच्चे हैं। बच्चे अगर सच्चे दिल से मेरे सम्मुख रखते हैं तो आधा क्या मैं उनका पूरा माफ कर देता हूं। तो ये हल्का रहने का बहुत अच्छा तरीका है, प्रतिदिन जो भी अगर सारे दिन में कोई ऐसी बात हुई है हम लिखें, और लिख करके बाबा के सम्मुख बैठ के याद करें, उसके बाद उसको फाड़ करके चाहे डस्टबिन में डाल दें। एक ये बात देखो, बाबा कैसे जानी, बाबा कहता है मैं जानी जाननहार नहीं हूं, लेकिन बाबा को तो वास्तव में सब चीज काफी हद तक पता रहती है। हमें याद है हम हॉस्टल में पढ़ते थे, पहले तो यही कि जब हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, धनबाद इंडियन स्कूल ऑफ माइंस करके है इंजीनियरिंग कॉलेज IIT, तो अभी वो उसका नाम IIT है, तो वहां पर हमारी तो दिल नहीं थी, क्योंकि शुरू से ये ज्ञान था समय बहुत कम है, बस जो भी पुरुषार्थ करना है कर लो। तो उस समय भी यहूआ भी जाएंगे, चार पांच साल पढ़ना पड़ेगा फिर। तो हमारी दिल नहीं थी, हमने अपने लौकिक पिताजी को बोला कि भाई हमारी तो दिल नहीं होती इतना लंबा पढ़ाई करे। पिताजी ने कहा नहीं, पढ़ना तो है ही है, चलो। तब तो बाबा थे, बाबा से पूछ लेते हैं जो बाबा श्रीमत देगा। हमने कहा ये ठीक है। यहाँ आ गए बाबा के पास। हाँ, तो बाबा ने मिलने का टाइम दिया, तो हमसे पहले दो कुमार और थे। तो वो दो कुमार जब उधर, एक गया पहले, उसने बाबा से पूछा, अब आके बताया कि हाँ बाबा ने मुझे कहा है आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ये कर लो। फिर दूसरा कुमार गया, वो भी बाबा से पूछा, अपनी परिस्थितियां बताई होंगी, तो बाबा ने उसे भी बोला, उसने भी मुझे आके बाहर बताया हमें कि बाबा ने ये कहा है कि हाँ आगे पढ़ने की बजाय ये बिजनेस जो कर रहे हो ठीक। मेरा टर्न आया तो बाबा को बताया, तो बाबा ने कहा नहीं तुम्हें तो पढ़ना है। तो मैंने कहा बाबा ये डबल स्टैंडर्ड क्यों, अभी मेरे सामने जो दो कुमार थे उनको आपने बोला तो नहीं पढ़ना। तो बाबा ने कहा देखो सबकी जीवन कहानी अलग अलग है, बाप जानता है सबका क्या भविष्य है। तो बाबा देख रहा है तुम्हारे द्वारा बाबा को बहुत देश विदेश की और बहुत बहुत जो सेवाएं करानी है वो बाबा के सम्मुख है, इसलिए तुम्हारे पढ़ाई में भी बहुत बड़ी सेवा समाई हुई है, तो इसलिए तुम्हें पढ़ना है, इंजीनियर बनना है और उसके बाद बाबा को बहुत सेवा करानी है। तो देखो हमें तुरंत पता नहीं चलता। उस समय जो एक भाई गया था वो तो एक्चुअली इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में दाखिल भी हो गया था, एडमिशन भी हो गया था और तभी उसके बाद आया था। तो उसने पढ़ाई पूरी की और उसके थोड़े दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई। तो देखो अगर पढ़ाई मतलब पूरी करता, उसने ले लिया और बाबा ने उसे बोला था क्या पढ़ने की जरूरत है बच्चे, अभी जॉब करो और बाबा की सेवा में लग जाओ, जितनी सेवा कर सको करो। तो देखो उसका कुछ वर्ष में ही शरीर उसका छूट गया। अगर वो अपना लौकिक रीति से पढ़ाई पढ़ता रहता तो जब तक उसकी पढ़ाई पूरी होती उसके बाद शरीर छूट जाता, कुछ कमाई भी नहीं होती, न लौकिक न अलौकिक। तो उसका ये दूसरा भाई था, उसका परिवार ज्ञान में नहीं था, कोई ऐसी परिस्थिति थी, कुमार दोनों कुमार थे। तो बाबा ने उसे कहा कि नहीं तुम्हें परिवार के साथ ही रह के परिवार का बिजनेस में मदद करनी है, हाँ पढ़ाई मत करो। उसकी दिल थी कि लौकिक वाले चाहते थे पढ़े, लेकिन उसका दिल आगे वो नहीं था। तो बाबा ने कहा ठीक है परिवार वालों से पूछ करके मिलके, लेकिन तुम्हें परिवार के साथ मिलकर चलना। वो परिवार वालों के साथ मिलकर रहा तो बाद में पूरा परिवार का बहुत बड़ा बिजनेस उसके पास आया, अभी तक भी वो बाबा की सेवा में है। और हमें भी जब से ये हुआ तब से देखा कि जहां जहां भी जाना हुआ, बस सेंटर नहीं होता था, जहां जहां ट्रांसफर होते थे और बाबा सेंटर खुलवा देता था। पहले धनबाद ही पढ़ने गए, वहीं सेंटर नहीं था, तो पहले फर्स्ट ईयर में बाबा ने वहीं पर ही सेंटर खुलवा दिया। पहले साल ही स्टूडेंट पीरियड में हमारा लास्ट में 150 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता था, हमारा 142वां नंबर था, एकदम पीछे की तरफ। तो एडमिशन हो गया, पढ़ना शुरू किया और फिर बाद में जो 150 लड़के होते थे उनका इंटरनल एग्जाम होता था, उसमें से फर्स्ट 10% को स्कॉलरशिप मिलती थी। तो वैसे हम बॉटमिस्ट थे लास्ट में, लेकिन जब इंटरनल एग्जाम हुआ उसमें हमारा फर्स्ट 15 में आ गया, स्कॉलरशिप मिलने लगी। और फिर तो 75 रुपए उस वक्त स्कॉलरशिप मिलती थी, बहुत बड़ी होती थी उस समय, 63 की बात है। हा? काफी तो शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे उस समय 63 में। तो क्या करा बाबा ने, बस बाबा के इतने पावरफुल कि उसमें एक टाउन में 50 रुपए का मकान लिया और फिर बहने और वहां पर बाबा ने वो सेंटर खुलवा दिया। तो देखो जो बाबा को काम कराना होता है बाबा किसी भी युक्ति से कराता है। हमने बाबा से पूछा कि बाबा वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाएंगे, हॉस्टल में रहेंगे तो वहाँ तो ये खाना होगा बाहर का। तो बाबा ने कहा कि अरे जब हम ज्ञान योग बल से सृष्टि को पवित्र कर लेते हैं तो क्या हम भोजन को पवित्र नहीं कर सकते, तो इसीलिए तुम दृष्टि देके भोजन करो वहां पर। तो बाबा ने ये कह तो एक तरफ दिया, बाबा को मालूम था उस समय हम कुछ महीने के थे, कच्ची नींव थी, अगर बाबा कहता नहीं तुम्हें तो पवित्र भोजन खाना है, खुद पकाना है, तो शायद मुश्किल हो जाता, होते भी नहीं। लेकिन साथ साथ बाबा ने युक्ति ऐसी रची कि स्कॉलरशिप भी मिल गई, सेंटर भी खुलवा दिया, तो 3 साल तक बाद में सेंटर पर भोजन करते रहे, पर शुद्ध भोजन भी मिलता रहा। तो उसी समय की एक बात के बाद फिर मैं बाबा की और बात पे, तो एक बार साथी में हमारे एक साथी विनोद भाई, वो अभी नीचे ट्रॉमा में है, तो वो भी उस वहां ज्ञान में सबसे पहले स्टूडेंट उस जगह के, वो भी थे इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे साथी, और अमेरिका में ज्यादा समय रहे, अभी 3-4 साल से शांतिवन में है। तो एक दिन हम लोगों ने सोचा हॉस्टल में कि चलो आज बाबा को गुरुवार का दिन है, बस भोग बना के हम लोग भी ले जाते हैं। सेंटर तो था, संदेशी भी थी, रोज भोग लगाती थी वहां पर। तो वहां पर भोग बनाते बनाते देर हो गई, फोन वोन तो होते नहीं थे उस समय मोबाइल, और हॉस्टल में भी फोन कहाँ से कि उन्हें इन्फॉर्म करे। तो 7 से 8 क्लास होती थी, मतलब 6:30 से योग वगैरह, लेकिन हमें पहुंचते पहुंचते ही वहां पर 7:45 जैसा बज गया। संदेशी 7 बजे से बैठी हुई भोग लेकर के हैं, लेकिन वो ध्यान में ही न जाए। जब हम लोग जैसे ही वहां पहुंचे और बाबा को भोग बनाया हुआ था दुआ, तो वहां जाके छोटी बहन को बोला ये थाली में बाबा के रख दो, रख दिया उसने, और उसके रखते ही तुरंत बाबा ने उसकी रस्सी खींच ली, हमारे जो वहां मुख्य बहन थी टीचर। तो बहन ने कहा बाबा आज मैं इतनी देर से बैठी हूँ, हमेशा तो आप मुझे 5-10 मिनट में ही खींच लेते हो, आज तो मैं 7.25 घंटे से बैठी हूँ, आपने मुझे खींचा ही नहीं। तो बाबा ने कहा अरे बच्ची, बाबा कैसे खींचता, इतने बच्चे प्यार से वहां हॉस्टल में भोग बना रहे थे, आ रहे थे, उनका भोग लिए बिना मैं तुम्हें कैसे खींच लेता। तो देखो बाबा कैसे जानी जाना हमारे, हम समझते हैं हमारी इस बात का शायद बाबा को मालूम नहीं। एक मुरली में भी बाबा ने बोला था, कोई हर बच्चे का टीवी मेरे सामने है, याद है मुरली, हर बच्चे का टीवी, और जब भी कोई विशेष बात होती है उस बच्चे का टीवी ऑन हो जाता है और फिर बाबा उसे देखते हैं। अगर कोई मर्यादा विहीन बात होती है कोई ऐसा, तो बाबा उस बच्चे को विशेष बल देता है कि जिससे बच्चा उससे हट जाए। या तो हमारी एक एक बात का हम समझे न समझे, भले कहें कि बाबा को फुर्सत ये थोड़ी है, लेकिन बाबा के पास, हाँ भले बाबा को उससे कोई मतलब नहीं है, और बाबा कहता है मैं कोई हरेक का ये काम थोड़ी करता हूँ, लेकिन अगर हम सच्चे दिल से कभी भी बाबा को पुकारते हैं, कोई डिफिकल्टी होती है, बाबा ने कहा ना आओ बाबा आओ मेरे पास, बाबा आओ मेरी मदद करो, कहा था ना बाबा ने कुछ वर्ष पहले मुरली में। और प्रैक्टिकल ये अनुभव है कि किसी न किसी को निमित्त बना के बाबा वो कार्य में ऐसा काम करता है कि एकदम सफल हो जाता है, बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह निकल जाता है। हमारा तो 10 बार का ये अनुभव है। खैर, तो यहाँ पर बाबा से आना जाना होता था, तो हम देखते थे कि जब हम शुरू में आते थे 62-63 वगैरह में, तो बाबा से बात करते थे, बाबा टाइम देता था और समस्या कोई होती थी हल करता था। उसके बाद जब हम 66-67 में करीब आते थे, मतलब बीच में, तो बस बाबा को कुछ बताते थे तो बाबा एक लाइन दो लाइन सुन के बाबा कहता था बच्चे बाबा समझ गया। लेकिन हम कहते थे बाबा अभी तो मैंने बोलना ही शुरू किया, अभी तो पूरी बात बोली नहीं, बने बच्चे बाबा समझ गया, यही कहना चाहते हो ना, कह के फिर बाबा उसका समाधान देके फिर एकांतवासी हो जाता था। लेकिन 18 जनवरी को हम ये बताए, 17-18 जनवरी इंजीनियरिंग कॉलेज से पास करके हमारी पहली पोस्टिंग आसाम में हुई। तब आसाम में कोई भी सेंटर नहीं था, एक भी सेंटर नहीं है। पास में पास सेंटर कलकत्ता था बंगाल में, वो भी वहां से करीब 3,000 किलोमीटर दूर। तो हमने बाबा के पास आए कि बाबा हमारी तो दिल नहीं है उधर जाने की, हमारी एक सिलेक्शन हैदराबाद में भी हुआ है, एक उधर रुड़की में, वहां चले जाते हैं और वहां जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा नहीं, बाबा ने ही तुम्हारी ये पोस्टिंग कराई है, वहां तुम्हें जाके सेंटर खोलना है, वहां कोई सेंटर नहीं। और बाबा देख रहा है वहां बाबा के कितने भोले भाले बच्चे बैठे हैं, चात्रिक हैं, तुम्हें बाबा निमित्त बना के भेज रहा है। तो बाबा ने इतना ही नहीं, बिछाने की चादर भी दी, लिटरेचर दिया, और पहले जमाने में ग्रामाफोन और वो तो ग्रामाफोन और रिकॉर्ड है वो हुआ करता था, तो सब सामान लेके वहां गए। और देखो करण करावनहार बाबा है, बाबा कहता है अगर बच्चों में कोई बात नहीं होती है विशेषता तो बाबा भी प्रवेश करके कार्य कराता है। तो हमें तो कितनी बार का ये अनुभव हुआ कि हमें हमारे में वो सामर्थ्य नहीं थी समझाने की, लेकिन बस जैसे ही समझाने में, हमें याद है 66 में जब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे तो वहां पर बड़ौदा आना हुआ, 65 या 66 के शुरू में, तब बड़ौदा में भी सेंटर नहीं था, लेकिन एक युगल भटनागर जी युगल वो वहां पर थे एयरफोर्स में पोस्टेड, उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी, तो बाबा ने उन्हें पत्र लिख दिया था ये बच्चा आएगा और भोजन तुम्हारे यहाँ करेगा। तो उस रीति से हम भोजन करने जाते थे, उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी वहां, तो दिन भर तो हमारा सर्वे और इंजीनियरिंग कॉलेज का एक्सकर्शन टूर होता था, शाम को वहां जाते थे। तो एक बार उन्होंने क्या फॉरेन की पार्टी करी, 15-20 सारे इंग्लिश, हिंदी जानते ही नहीं थे, वो पार्टी उन्होंने दे दी हमें कि इन्हें ये समझाएंगे, वो समझते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है समझा देगा। तो हमें तो समझाने का अभ्यास नहीं था और वो भी इंग्लिश में बिल्कुल। तो वो आए तो हम अंदर जाके बाबा को याद किया और बाबा को कहा, बाबा का आह्वान किया, बाबा आप हमेशा कहते हो ना जब बाबा देखता है बच्चा कोई बुद्धू है और समझने वाले अच्छे आए हैं तो मैं प्रवेश करके समझाता हूँ, तो बाबा आज आपका टेस्ट है, आज आपको समझाना है। बाबा पर अधिकार रखो, अधिकार से बोलोगे ना वो बात हुई। उसके बाद हम गए समझाना शुरू किया और हमें खुद पता नहीं चला कैसे इतना फ्लॉलेस इंग्लिश में और इतनी अच्छी तरीके से 40 मिनट तक उस पार्टी को पूरा समझाया और बड़ा सेटिस्फाई होकर वो चले गए। एक हफ्ते की प्रदर्शनी लगाई थी, फिर 2 दिन बाद एक पार्टी आई, उन्होंने भाई ने हमें दे दिया, तो हम तो अपने को 30 मार खां समझने लगे थे कि हम तो समझा देंगे। तो उस दिन जैसे ही समझाना शुरू किया ना, बस समझा नहीं सके ठीक से, क्योंकि बाबा का आह्वान भी नहीं किया और बाबा भी साक्षी हो जाता है। जब बाबा को साथी बनाते हैं तो बाबा साथीपन का अनुभव कराता है, नहीं तो बाबा समझता है अगर ये समझते हम कि मैं कर रहा हूं तो साक्षी, तो वो भी अनुभव हुआ। तो ये जीवन भर के लिए लेसन हो गया, चाहे जितना सहज से सहज भी काम हो वो कठिन हो जाता है और कठिन से कठिन काम भी हो वो सहज हो जाता है अगर बाबा को साथी और साक्षी नहीं बनाया। जीवन में बहुत बहुत ऐसे अनुभव है। तो मैं बता रहा था कि पहली पोस्टिंग हमारी जब आसाम हुई तो आसाम में बाबा का लेटर हर हफ्ते आता, अभी भी हमारे पास लगभग बाबा के 8-10 लेटर हैं, और जो बाबा लिखता था बच्चे जाओ मंदिर में जाओ वहां ये करो जाते थे, चूंकि बाबा ने लिखा है भगवान जानी जाननहार, वहां से कोई ना कोई निकल आता था। बाबा के पास वहां एक जगह गए, वहां लेक थी बहुत बड़ी, उस लेक के पास जाओ बच्चे, बाबा को समाचार देते थे ये ऐसा शहर है, तो लेक के पास जाओ, बस 4 चित्र थे त्रिमूर्ति झाड़ लक्ष्मी नारायण सीढ़ी, तब इसे खोल करके वहां बैठ जाते थे, लोग आते थे देखते थे समझते थे, उन्हीं में से ही निकल जाते थे। और इस तरीके से 1 महीने में ही वहां पर इतने लोग हो गए, उन्होंने खुद ही मकान लिया और एक मंदिर में पहले क्लास शुरू करी। तो मंदिर में जब क्लास शुरू की तो बाबा कैसे वो कराता है, तो पुजारी भी वहां सुनता था, उसने पूरा मंदिर का वो खोल दिया और कि भाई हाँ आप क्लास कराओ भले यहाँ आके। मारवाड़ी माताएं आती थी तो जैसे ही मुरली शुरू होती थी और कितने ही माताएं ध्यान में चले जाते थे, साक्षात्कार में चले जाते थे, और जो शुरू का पार्ट बाबा का चला वो पार्ट बाबा ने वहां पर चलवाया। क्योंकि तो बाबा जानता था भाई इतना समझाने की, तब प्रदर्शनियां भी इतने नहीं थी, समझाने का भी उतना अनुभव नहीं था, तो बाबा को काम कराना, हम अपने को बस ऑफर कर देते हैं तो बाबा काम करवाता है। ऐसे ही हम आसाम में ना, जब वहां पर ये सेवा होती रही तो जनवरी का महीना था, बहुत बाबा हमेशा पत्र लिखता रहता था और वहां से सब लोग पत्र का जवाब देते रहते थे। तो एक बार हमने लिखा, जो वहां से देहरादून से गए थे, कि बाबा देहरादून में बहन जी का पत्र आया, म्यूजियम बनने वाला है तो वहां जाए। तो बाबा का तुरंत वहां से एकदम जवाब आया टेलीग्राम कि वहां बाद में जाना, पहले मधुबन आओ और प्लेन से आओ तुरंत। ये जनवरी के लगभग 12, 13, 14 तारीख की बात होगी 69 की। हमने जल्दी जल्दी तुरंत ही लीव का अप्लाई किया और प्लेन से आए, पहली बारी लाइफ में तब प्लेन से मतलब ट्रेवल किया और यहाँ 17 जनवरी की सुबह पहुंच गए। तो 17 और 18 जनवरी को बाबा के साथ ही साथ थे, बाबा की कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला वहां पर। तो बस चूंकि वहां सेंटर कोई बहन तो थी नहीं, और थोड़े समय में ही वहां पर 100 से अधिक भाई बहन, जैसे शुरू में क्योंकि ध्यान का पार्ट जो खुल गया ना उस शहर में, ये फैल गया, यहाँ तो सबको भगवान का वो होता है और नेचुरली भक्ति मार्ग में तो साक्षात्कार बहुत बड़ी चीज समझी जाती है। तो बहुत क्लास बढ़ती रही, तो यहाँ पर आए तो बाबा से ये बात पूछेंगे, ऐसा पूछेंगे, परसों पुरुषार्थ बाबा के सम्मुख जाते थे, बस बाबा थोड़ा दृष्टि दी, बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा। शुरू में बहुत डिटेल बतानी पड़ती थी, बीच में दो चार लाइन बतानी पड़ती थी, लेकिन अंतिम दो दिनों में एक अक्षर भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी और बाबा दृष्टि देके मन के भाव सारे जान लेता। बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, और फिर बाबा अपनी धुन में मस्त हो जाता था। ये है मन जीते जगत जीत का लक्षण, इच्छा मात्रम अविद्या का लक्षण, जो बाबा हम बच्चों से भी चाहता है कि अंत में हमारी स्टेज भी ऐसी हो जाए, अंत में हमारे सम्मुख भी बहुत विश्व की आत्माएं आएंगी, कोई साक्षात्कार की इच्छा लेके, कोई अनेक प्रकार की इच्छाओं से, इतना तो समय होगा नहीं कि वो हमें बताएं और हम उनका सुने। बस अगर हम इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, हमने अपने मन को जीता हुआ होगा, हम तुरंत ही एक सेकंड में दूसरे के मन के भावों को परख सकेंगे और उसकी इच्छा को पूर्ण कर सकेंगे। ये प्रत्यक्ष में बाबा ने लगभग 7 बार 17 जनवरी की सुबह से लेकर 18 जनवरी की रात तक, क्योंकि और कोई पार्टियां थी नहीं, बाबा से बार बार मिलना होता था तो हर बार ऐसा होता था। तो ये एक हम बच्चों को ये लक्ष्य रखना चाहिए कि जितना मेरे मन में कम से कम संकल्प हो, इच्छा मात्रम अविद्या में आत्मा होती जाऊं, उतना उतना बाबा हमें संपूर्णता के नजदीक ले जाएगा। और बाबा ने कहा है, बच्चों ने अगर रियल मेहनत की है फिर भी अगर कोई कमी हो गई है तो बाप जवाबदार है, बाप उन्हें ग्रेस मार्ग देके उन्हें माला का मणका बना देगा, खींच लेगा। लेकिन पहली बात यही है कि पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए 20 नाखून का जोर, और अगर नहीं हुआ जोर तो फिर बाबा भी साक्षी हो जाता है। एक ये देखा बाबा का, जैसे बाद में बहनों ने बताया कि जैसे ये पानी होता है ना, पानी अगर कोई हलचल नहीं होगी, स्थिर होगा, हम अपनी छवि भी उसमें देख सकते हैं, लेकिन पानी में एक छोटा सा कंकड़ डाल दो, लहरें पैदा हो जाएंगी तो उसमें हमें अपना प्रतिबिंब भी स्पष्ट दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही हमारा भी यही होगा कि अगर हमारे अंदर संकल्पों की, बाबा कहता है विकारों की तो बात नहीं, अभी व्यर्थ संकल्प भी नहीं चलने चाहिए, अभी व्यर्थ संकल्प भी मानव विकारी संकल्प है। तो इसीलिए व्यर्थ संकल्प भी होगा तो हम दूसरे के संकल्पों को पढ़ नहीं सकेंगे। अब पढ़ नहीं सकेंगे तो उनकी इच्छा को कैसे पूर्ण कर सकेंगे। एक तो ये अनुभव किया बाबा के अंतिम दो दिनों में, दूसरा अनुभव ये किया साथ साथ कि बाबा के पास ना जब भी उस दिन बाबा ने 18 जनवरी की मुरली चलाई, बाबा ने उस दिन सुबह मुरली नहीं चलाई थी और तो सबके मन में था आज बाबा ने मुरली नहीं चलाई, तो बाबा जब 18 जनवरी की रात को हमेशा क्लास 8:30-9 होती है यहाँ पर 9 बजे, उस दिन बाबा ने 7 बजे ही जमुना प्रसाद भाई को बल्कि 6:30 बजे बुला के बोला आज बाबा क्लास जल्दी कराएगा, सबको इन्फॉर्म कर दो। बाहर 1 घंटा रखा रहता था, उसे बजाया, उन्होंने सब इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा आज बाबा क्लास कराएगा जल्दी सब आ जाओ। तो सब खाना वाना खा पी के 7:15-7:30 के अंदर इकट्ठा हो गए। उसके बाद बाबा आए, बाबा ने क्लास कराया। एक तो ये इस बात का सूचक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे हमें भी आभास हो जाएगा कि अब हम ये शरीर छोड़ने वाले हैं और ये बस इस शरीर के साथ हमारा हिसाब किताब पूरा हुआ। बाबा को भी यही आभास जैसे पूर्ण रूप से हो गया था और इसीलिए बाबा ने पहले 2 घंटा पहले क्लास करा दी। और बाबा की वही स्थिति बिल्कुल, उस दिन एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, नहीं तो हमेशा कई बार बाबा को खांसी आती थी और गला साफ करने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उस दिन एक बार भी बाबा को खांसी नहीं आई, जो इस बात का प्रतीक है कि जब हम भी कर्मातीत अवस्था के निकट होंगे ना तो शरीर के जितने भी कर्म भोग हैं उनके ऊपर हमारा योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेगा, जिससे अंत समय जब हमारे प्राण स्तन से निकलेंगे आत्मा जाएगी और गायन जो है अंत मति सो गति का, उस समय ऐसी स्थिति होनी चाहिए कोई व्यक्ति वस्तु वैभव कोई भी चीज याद न रहे, तब ही कर्मातीत अवस्था होगी। अगर मानो उस समय खांसी आई, उस समय तकलीफ हुआ, उस समय मानो अर्थक्वेक हुआ, अभी ये छत गिर गई और उसकी वजह से हम मर गए, तो चारों तरफ हाहाकार होगा, खून बह रहा होगा, तो ऐसे समय में अगर प्राण निकलेंगे तो अंत मते सो गति क्या होगी, 50 चीज याद आएंगी उस समय तो दूसरे चीज। इसीलिए बाबा ने कहा है अंत मति सो गति का गायन कि अगर हमारा बुद्धि योग बाबा से वायरलेस की तरह होगा, वॉइसलेस कनेक्शन होगा, ऑटोमेटिकली हमारे पांव वहां बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। चाहे जितनी भी अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, साइक्लोन हो, फ्लड हो, पुर हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारा बुद्धि योग होगा तो ऑटोमेटिकली वहां, अगर हम पुर की वजह से पानी में डूब के मर गए, अर्थक्वेक की वजह से शरीर छोड़ दिया, तब तो ऐसी परिस्थितियां हो जाएंगी वो अंतमति सो गति हमारी सदगति नहीं हो पाएगी। इसीलिए इसके लिए भीष्म पितामह की तरह शरीर छोड़ने का वरदान, इच्छा मृत्यु का वरदान, ये माला के मणकों की एक विशेषता विशेष होगी। अपनी इच्छा से वो शरीर छोड़ेंगे जिससे कि बस हाँ बाबा अब हम आपके पास आए, आए कि आए, इस शरीर से हिसाब पूरा हुआ, वो हमारी अंत मते सो गति का लक्षण है। उसके लिए बड़ी गहन तैयारियों की जरूरत है, हर तरफ से बुद्धि योग हटा हुआ हो। और यही बाबा को देखा, पहले बाबा सारे काम खुद करके हर एक को गाइड किया करते थे, फिर धीरे 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 बाबा समेटते गए। 61-62 से तो 69 तक हमने देखा बाबा ने धीरे सब समेट लिया, समेट करके बस कोई आता था पूछता था एक अक्षर में जवाब दिया या मन के भाव पढ़ लिया और उसके बाद बाबा फिर खुद उसमें वो हो गए। इस तरह बाबा के एक ये देखा। और बाबा का क्या देखा, हिस्ट्री हॉल है आप देखोगे, संधली है, संधली के पास ट्रांसलाइट का पिक्चर है श्री कृष्ण का, लक्ष्मी नारायण का भी, तो बाबा देख के खुश हुआ करते थे और बाबा को खांसी आती थी जैसे बताया कई कभी कभी, और कई बार तो इतनी तेज खांसी हो जाती थी बाबा की आंखें भी जैसे कुछ गीली जैसी हो जाती थी, तो हम लोगों को बड़ा होता था, बाबा को तकलीफ हो रही होगी, लेकिन दूसरे ही क्षण बस बाबा एकदम कैसे स्वस्थिति से परिस्थिति पर विजय, बाबा की एकदम इसमें मास्टरी थी। स्वस्थ परिस्थिति ऐसी कि खांसी आ रही है, आंख में से भी पानी और बहुत तकलीफ हो रही है, देखने में ये आता था, लेकिन ऐसे समय भी बस स्वस्थिति में स्थित होके देखो बच्चे आज तो ये पुराना शरीर है, खांसी है, तकलीफ है, कल बाबा जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनेगा, इतना बस नई दुनिया होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी, कितना आनंद होगा, बच्चों को तो बस खुशी में ऐसे ही खुशी में रहना चाहिए। क्या करना चाहिए खुशी में? खग्गियां मारनी चाहिए। बाबा करके बता, खग्गियां कैसे मारते हैं बच्चे मालूम है? हमें नहीं मालूम था, तो एक बार बाबा ने पहले वाले ट्रिप में बताया, तो देखो खुशी में खग्गियां माने ये ऐसी है, ओ कल जाके मैं ऐसे, बाबा के चेहरे पर ना एकदम कृष्ण कैसा भाव आ जाता था, वही चित्र बिल्कुल लगता ही नहीं था बाबा है बल्कि कृष्ण ऐसा बच्चे। तो इतना खुशी हो जो गम को खा जाए, कोई भी गम, और वो प्रैक्टिकल। एक क्षण पहले बाबा को इतनी खांसी आ रही थी, तकलीफ हो रही थी, दूसरे क्षण स्वस्थिति से बाबा ने उस परिस्थिति को बदल के अपने अधीन कर लिया। यही होना चाहिए। हम बच्चे अभी क्या है, परिस्थितियों के अधीन हो जाते हैं। इवन परिस्थिति हमारी नहीं भी है, टीवी में देखा कोई दृश्य, उस दृश्य के अधीन हो जाते हैं। रोने वाला दृश्य है, रोने वाला, अर्थक्वेक है कहीं पर, अर्थक्वेक, उस परिस्थिति के अधीन हम बच्चे। तो अपने को ये चेक करो, जब कभी ऐसी विपरीत परिस्थिति हो वहां जाएं, मानो किसी ने शरीर छोड़ा, वहां जाएं, देखें, चेक करें, दम का वातावरण होगा, लौकिक वाले रो रहे होंगे, वहां जाके हम अपनी स्वस्थिति की चेकिंग करें और इतना सकाश दे वो परिस्थिति, मतलब दुख की लहर से बाहर आ जाए। जिसे बाबा ने कहा है, रोता हुआ व्यक्ति आए और हंसता हुआ आपके सम्मुख से चला जाए, अशांत आत्मा आए, शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए। ये एक अनुभव किया। और क्या इसमें बाबा का ये देखा कि इतना स्वस्थिति पर विजय, और इसका अभ्यास कैसे, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को कहा, अभी आप बच्चों के सामने पेपर तो बाबा ने कई सारे बताए हैं, लेकिन दो मुख्य पेपर वर्तमान परिस्थितियों के मुताबिक हम बच्चों के सम्मुख होंगे। कौन से दो पेपर? एक शरीर का पेपर। युवान ये ना समझे कि भाई हम तो यंग है, हमें कोई बीमारी नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन नहीं, आत्मा तो ये 63 जन्मों के विकर्मों का बोझा जो है ना, वो सिर पर चढ़ा हुआ है, तो इसलिए आत्मा को उन पेपर से पार होना है। इसीलिए एक ये पेपर आएगा, और उस पेपर में पास होने का तरीका क्या है? सबसे बढ़िया जो बाबा को बहुत अच्छा अभ्यास हो गया था, क्या पार्टियों को मिलने का टाइम दिया हुआ होता था, तो एक पार्टी की बहन आती थी कि बाबा से कहने की बाबा पार्टी लाई हूं, बाबा अपनी मस्ती में मगन बैठा है झोपड़ी में या अपने कमरे में, और वो आके बोलती थी बाबा बाबा, तो थोड़ा सा बाबा को जैसे कभी कभी जर्क जैसा लगता था, है बच्ची कोई नींद नहीं, कोई साक्षात्कार नहीं, आंख भी खुली हुई है लेकिन देह यहाँ है, बुद्धि वहाँ है। हाँ बच्ची, बाबा पार्टी लेके ये आई हूँ। अच्छा अच्छा, ले आओ पार्टी को। फिर एक एक आते थे, बाबा से मिलते थे, और बाबा से मिलके बाबा उनको छुट्टी देता था। यहीं पर ही बाहर चित्र लगा हुआ है ना, एक वो एक्चुअल पोज है बाबा का, जब हम लोग बाबा के सम्मुख आते थे, बाबा इतने थे, आओ बच्चे, आओ आओ मीठे बच्चे आओ, और एकदम चुंबक की तरह हम खिंचके बाबा की बाह में आ जाते थे वन बाय वन। लेकिन ब्यूटी क्या थी? ब्यूटी ये थी कि जैसे ही बाबा की दृष्टि पड़ती थी और बाबा की बाह में आए, तुरंत ही विदेही हो जाते थे, अशरीरी हो जाते थे, देह का भान नहीं रहता था। फिर एक आध मिनट के बाद बाबा ऐसा ऐसा थपथपाता था, हाँ बच्चे, बाबा की हाइट तो काफी अच्छी थी, और ये आ बच्चे आओ आओ आओ। फिर जैसे कि हम देह में खींच के आते थे, फिर बाबा टोली खिलाता था, हालचाल पूछता था, फिर एक बच्चा जाता था, दूसरा आता था, और हरेक का ये अनुभव होता था। क्यों होता था? क्योंकि बाबा को खुद आत्मिक अभ्यास इतना पक्का बाबा ने कर लिया था, जो आप सबने सुना भी होगा ना, लिख लिख के पक्का किया था बाबा ने, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, नारायण आत्मा आदि आदि। तो हम भी अपने को ये चेक करें, और जैसी हमारी स्थिति होगी वैसे हम जैसे किसी को देखेंगे उस व्यक्ति की भी वैसी स्थिति हो जाएगी। अंत में सेवा का यही साधन है जो संपूर्ण वो उस आत्मा को, हर आत्मा को हमारे करीब लाएगा। एक ये स्थिति होनी चाहिए जो वहां था। तो शरीर के पेपर से मुक्ति उसके लिए, शरीर के बहुत देखो हमने देखा, बाबा का देखा, मम्मा का, क्या हिसाब किताब हर एक का। हा? बाबा को तो खांसी बड़ी, दादी का देखा, आप सबने भी कईयों ने देखा होगा। लेकिन दादी से भी हम लोग पूछा करते थे, दादी आपको तो बड़ी तकलीफ हो रही होगी इसमें, लेकिन दादी कहती थी नहीं नहीं मुझे तो कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल दर्द नहीं है। तो उसका राज यही है, शरीर में आना जब चाहे और जब चाहे शरीर से डिटैच हो जाना। बाबा का यही था, जब बाबा बैठा होता था एकांत में बैठा है, शरीर से डिटैच हो गया। जैसे ही कोई काम लेकर के आया, बाबा ये पार्टी लेके आए हैं, बाबा तुरंत ही जैसे खिंच के आया, शरीर में आया, पार्ट बजाया, जो कुछ करना है उसके बाद फिर शरीर से निहारा। एक तो ये पाठ हम बच्चों को पक्का करना है, अगर अंत मते सोगते हम कर्मातीत अवस्था इच्छा मृत्यु का वरदान पाना चाहते हैं, इच्छा मात्रम अविद्या, ये। और दूसरा पेपर बाबा ने बताया है परिवार का पेपर। अभी परिवार बाबा का बहुत बढ़ता जा रहा है, और अनेक प्रकार के बच्चे, और राजधानी स्थापन हो रही है, राजा रानी भी बन रहे हैं और बच्चे जो हैं वो बन रहे हैं, सब साधारण प्रजा और रॉयल परिवार सबकी स्थापना हो रही है। तो ऐसा बहुत संभव है और होता है, किसी बहुत पुराने 15-20 साल 25-30 साल वाले का भी हम देखते हैं कि भाई उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, वो एक लो से पास हो रहा है। तो बाबा ने क्या कहा है इसके लिए, हमारी अवस्था ना बिगड़े, क्योंकि अक्सर करके ये होता है, अरे इस 30-40 साल वाले की भी ऐसी स्थिति, तो मैं तो अभी 10 साल पुराना ही हूँ, मेरा भी अगर ये हुआ, मुझे भी क्रोध आ गया, मेरे अंदर भी अगर ये बात हुई तो क्या हुआ। लेकिन बाबा ने क्या कहा इस पेपर से पास होने के लिए, क्या करना है, हर एक आत्मा को हम तीन काल की दृष्टि से देखें, तीनों कालों की, केवल वर्तमान काल नहीं, वर्तमान में तो वो लो से पास हो रहा है या उसकी स्थिति अच्छी नहीं प्रतीत होती, लेकिन वो कौन आत्मा है जिसे भगवान ने सेलेक्ट किया है। बाबा ने कहा है एक एक बच्चा मेरा सेलेक्ट किया हुआ है, और एक एक बच्चा आज के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी महान है। क्यों? क्योंकि भगवान की नजर उस पर पड़ी है, और देखने में यहाँ साधारण है, लेकिन ये वही डबल ताजधारी महाराजा महारानी है सतयुग वाले, इसलिए एक एक बच्चा महान है। तो अब हम अपने को भी और दूसरों को भी उस नजर से देखेंगे तो क्या होगा कि किसी भी आत्मा की कोई भी स्थिति देखेंगे तो हमारे मन में प्रश्न ये नहीं होगा, क्यों, क्या, कैसे आदि आदि, और वो हमारी अवस्था को कभी भी नीचे नहीं लाएगा। इसीलिए क्यों, क्योंकि भगवान का सिलेक्शन है, और भगवान का सिलेक्शन कभी गलत नहीं हो सकता। त्रिकालदर्शी है, तीनों कालों को वो जानता है, एक एक बच्चे के तीनों कालों को जान करके उसने सेलेक्ट करके यहाँ लाया है, अपना बनाया है। तो हम वो सौभाग्य पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है जिन्हें भगवान ने सेलेक्ट किया है, तो इस पेपर से भी सहज रीति से पार हो जाए। अब अंतिम दृश्य पर सीधे आ जाते हैं। 18 जनवरी को बाबा क्लास कराने आए, बस क्लास करा के बाबा ने क्लास कराई, जैसा मैं बता रहा था कोई भी बिल्कुल कोई व्यवधान पैदा नहीं हुआ। बाबा क्लास करा के उठ के खड़े हुए, एक कदम आगे बढ़े, फिर बाबा खड़े हो गए, फिर एक एक बच्चे को दृष्टि देने लगे बाबा। दादी प्रकाशमणि जी सम्मुख बैठे हुए थे, बार बार दादी के बाबा की नजर उतरते उतरते रुकते रुकते दादी पर आके रुक जाती थी, उनको ज्यादा देर तक दृष्टि, फिर एक एक बच्चे को नजर दृष्टि देते थे। फिर बाबा एक दो कदम आगे बढ़े, फिर बाबा रुक गए, फिर बाबा घूम करके फिर दृष्टि देने लगे। ऐसे अब हिस्ट्री हॉल तो छोटा ही है बहुत, यहां से यहां तक जाने में बाबा 3-4 बार रुके। बस बाबा को जैसे ये हो आज मैं बच्चों को शक्ति से भरपूर कर लू, बस कंटिन्यूअस बाबा दृष्टि देते थे एक एक बच्चे को, और बस दृष्टि दे करके और फिर बाबा दरवाजे के पास जाके बाबा ने क्या बोला, अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदाई लेता है। पहले बाबा ने ये शब्द कभी नहीं बोले। तो ये इस बात का सूचक ही है कि जैसे बाबा को पूर्ण आभास हो गया था, अब बच्चों से भी छुट्टी लेकर के विदाई लेकर के बाबा अपने कमरे में गए, दादी के हाथ में हाथ, और बाबा ने कैसे शरीर छोड़ा। लेकिन आश्चर्य तो उसके बाद देखने को मिला। क्या आश्चर्य? कि बाबा ने शरीर छोड़ा उस दिन रात को, और वो शरीर रखा रहा 18 की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, 21 को भी दोपहर के बाद लगभग 1-2 बजे उनका बाबा का संस्कार किया गया। हम तो यहाँ पर ही थे, हमने भी स्नान आदि वगैरह कराने का मौका मिला, और सब लोग जो हमारे वरिष्ठ भाई सब, रमेश भाई, जगदीश भाई, सभी लोग थे। और लेकिन बाबा का इतना घंटे, लगभग 65-70 घंटे हो गया था, लेकिन फिर भी ये 5 तत्वों से बना शरीर बाबा के शरीर में ऐसे ही फ्लेक्सिबिलिटी, नहीं तो शरीर स्टिफ हो जाता, अकड़ जाता है ना, थोड़ी बहुत ये वो हुई होगी, फिर भी बाबा का शरीर एकदम काफी हद तक फ्लेक्सिबल। और दूसरा, उस शरीर में कालापन नहीं आया, एकदम दुर्गंध बिल्कुल नहीं आई। कोई इंजेक्शन नहीं दिया गया था, कोई भी उसके अंदर केमिकल लोशन नहीं लगाया गया, लेकिन बाबा ने 5 तत्वों की भी इतनी सेवा की कर दी थी कि अंत समय भी ये 5 तत्वों से बना शरीर उसने बाबा को पूरा का पूरा अंत में साथ दिया, और वैसे ही चमकता हुआ शरीर, गोरा रंग, लगता था बाबा जैसे सोए पड़े हैं और उठ करके बोलेंगे हमेशा की तरह, आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, ऐसा प्रतीत होता था। तो ये है, बाबा की तरह हमें भी इन 5 तत्वों की इतनी सेवा करनी है, इतना शुभ भावना शुभ कामना का दान करना है, वो तो एक बहुत अलग विषय है, कैसे उन तत्वों पर हम विजय प्राप्त कर लें, कैसे उन तत्वों से गुण धारण करके हम अंत में इच्छा मात्रम अविद्या होकर के इच्छा मृत्यु भीष्म पितामह की तरह उसको प्राप्त कर सकते हैं जैसा ब्रह्मा बाबा ने प्राप्त किया। और वही लक्ष्य हम सब बच्चों का होना चाहिए, पुरुषार्थ तो ऐसा हो ही, लेकिन ये पुरुषार्थ उसी एक क्षण के लिए हम सबका है जब हमारे प्राण तन से निकलेंगे, और उस समय हमें कोई भी याद न पड़े, वो तब होगा जो बहुत समय का अभ्यास होगा। और उस समय के उस अभ्यास के लिए और क्या करना है, इन तत्वों से हमें मित्रता करनी है। वो कैसे करेंगे वो तो अभी मैं नहीं लेता क्योंकि दूसरी क्लास का आपका समय हो गया है, लेकिन इसके लिए एक एक तत्व को हम पढ़ें, स्टडी करें, एक एक तत्व के साथ अपने गुणों को मैच करके हम अगर आगे बढ़ते रहेंगे तो ये तत्व अंत समय हमारे मित्र का काम करके हमें संपूर्ण बनाने में सहयोगी बनेंगे, न कि ये मित्र यही तत्व दुनिया के लिए विनाश का कारण बनेंगे, दुनिया की सफाई का, उनकी मृत्यु का कारण बनेंगे, लेकिन यही तत्व हमें संपूर्णता की ओर ले जाने का कारण बनेंगे अगर हमने इन तत्वों से मित्रता की होगी, इनके जैसा अपने को बनाया होगा। अभी तो समय हो गया है, मैं यहीं पर ही समाप्त करूंगा कि ये कैसे करें, ये तो बहुत अलग विषय है, लेकिन ये लक्ष्य अगर हम रखेंगे तो बाबा हमें इन तत्वों के समान बना करके बाबा अपने साथ हमें ले चलेगा। ओम शांति, ओम शांति,
ओम शांति। आदरणीय मोहन भाई जी ने बहुत अच्छा बाबा के साथ का उनका अनुभव सुनाया। हम सभी सुनते सुनते ऐसे ही अनुभव कर रहे थे कि हम भी बाबा को अपने सामने ही देख रहे थे, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें भी सुनाई, कैसे बाबा सच्चाई सफाई रखने के लिए पत्र लिखने के लिए कहते थे, कैसे बाबा की हर बच्चों के लिए अलग अलग श्रीमत होती थी और उस श्रीमत में ही हम बच्चों का कल्याण है। और बहुत अच्छी एक बात देखने को मिली, खग्गियों की बात मुरली में तो हम सुनते हैं लेकिन आज प्रैक्टिकल में हमने देखा तो हमें बहुत खुशी हुई। सुनते सुनते बाबा का साथ का अनुभव हो रहा था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।